आप सबका स्वागत है यहाँ श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में। आज के इस रविवार के कार्यक्रम में भगवद गीता में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सुअर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और मेरे कर्म की दिव्यता को जो जान लेता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, ये जो तत्वतः जानता है, केवल भावुकता से नहीं, तत्वतः अर्थात पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाता है, उसके पीछे छिपे हुए सिद्धांतों को समझ लेता है, उसकी उन लीलाओं के द्वारा दी गई शिक्षाओं को ग्रहण करके अपने जीवन में पालन करता है। ऐसा व्यक्ति त्यक्त्वा देहम, जब अपना देह छोड़ता है, पुनर्जन्म नेति, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो भगवान के जितने भी कार्य हैं वो सब दिव्य हैं। चाहे भगवान चाणूर और मुष्टिक से युद्ध करें, वो भी दिव्य है। भगवान ग्वाल बालों के साथ खेलें, वो भी दिव्य है। या फिर भगवान गोपियों के साथ रासलीला करें, वो भी दिव्य है। तो भगवान की असंख्य लीलाएं हैं और उनमें से एक लीला भगवान करते हैं और वो है विवाह। तो आज हम लोग विवाह पर चर्चा करेंगे, कृष्ण के विवाहों पर। श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किए, वर्ल्ड रिकॉर्ड, कोई तोड़ नहीं पाया अभी तक, और शायद ही कोई तोड़ेगा जब तक अगले बार कृष्ण आएंगे। तो रावण ने प्रयास किया था, पहुंच नहीं पाया। तो 16,108 विवाह किए, जिनमें से 8 प्रमुख रानियां थी, उनकी महिषियां जिन्हें कहते हैं, द्वारका की महिषियां। तो इन 8 विवाहों की चर्चा आज करेंगे, किस प्रकार श्री कृष्ण ने ये 8 विवाह किए संक्षेप में, क्योंकि अगर एक एक विवाह की विस्तार से चर्चा होगी तो फिर आज ये प्रवचन पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए संक्षेप में इन विवाहों की चर्चा करेंगे। तो 16,108 महिषियों में 8 प्रमुख थी, जिनके नाम थे, सबसे पहली थी रुक्मिणी देवी, जिनके साथ सबसे पहले विवाह किया भगवान ने। दूसरी थी जाम्बवती, जिनके साथ कुछ समय बाद भगवान ने विवाह किया। फिर सत्यभामा, और सत्यभामा के बाद उन्होंने विवाह किया कालिंदी से। ये हम तो चर्चा करेंगे, ये कौन हैं और कैसे विवाह हुए। कालिंदी के बाद विवाह किया मित्र वृंदा से। ये भी बहुत कई विवाहों में भगवान ने इन 8 विवाहों को अलग अलग तरीके से भी किया। जैसे रुक्मिणी के विवाह को हम लोग जानते हैं कि भगवान ने रुक्मिणी को हरण किया था, तो फिर उन्होंने विवाह किया कालिंदी से। कालिंदी के बाद विवाह हुआ उनका मित्रविंदा, मित्रविंदा के बाद नागनजीती, नागनजीती के बाद भद्रा, और भद्रा के बाद लक्ष्मणा। ऐसे 8 विवाह उन्होंने किए। आप में से किसी को याद हुए नाम श्री कृष्ण की 8 प्रमुख रानियों के? अभी बताया हमने, रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, नागनजीती, भद्रा और लक्ष्मणा। बहुत अच्छा, आप लोगों की स्मृति भगवान ने बहुत अच्छी दी है आपको। तो ऐसे ये 8 विवाह हुए, भगवान ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। और जैसे हम बतला रहे थे कि ये दिव्य लीलाएं हैं, ये कोई साधारण विवाह नहीं थे। बहुत से संदेश इन विवाहों से भगवान ने हम सबको दिए, इन लीलाओं से भगवान ने हम सबको दिए। तो प्रश्न किया था परीक्षित महाराज ने। हम प्रारंभ करेंगे पहले विवाह से, लेकिन क्योंकि रुक्मिणी विवाह की चर्चा कई बार कर चुके हैं इसलिए विस्तार से नहीं करेंगे, अन्य विवाहों की चर्चा को थोड़ा सा विस्तार से करेंगे। प्रयास करेंगे भगवान के आज आठों विवाह आज ही करा दें एक ही दिन में। भगवान ने तो कई काफी समय लगाया था आठ विवाह करने में, और फिर उसके बाद 16,100 विवाह की भी चर्चा करनी है। और इन सब के परे और एक विवाह हुआ था भगवान का, अर्थात 16,109 विवाह हुए थे, तो उसकी चर्चा अंत में करेंगे अगर आज समय मिला तो। तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, जब उन्होंने रुक्मिणी के विवाह का वर्णन सुना, परीक्षित सुखदेव गोस्वामी ने एक ही वाक्य में कह दिया कि भगवान ने विवाह किया, तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि हमने सुना है कि श्री कृष्ण ने रुक्मिणी देवी से राक्षस पद्धति से विवाह किया, तो कैसे किया, कैसे उन्होंने बाकी राजाओं को हराया, इस लीला का वर्णन कीजिए। देखिए परीक्षित महाराज के पास ज्यादा समय नहीं था, दो या तीन दिन बाकी थे, दो दिन ही केवल बाकी थे, और अब वे प्रायः अपने प्राण त्यागने वाले हैं तो जानते थे, तो ऐसे समय में उन्होंने विवाह की बात क्यों पूछी कि कैसे विवाह किया, कैसे हरण किया, बताइए। क्योंकि परीक्षित महाराज जानते हैं कि भगवान के सारे कार्य दिव्य हैं, और जो भक्त होते हैं वो ऐसी लीलाओं को सुनने में बड़ा आनंद लेते हैं, क्योंकि वो उन लीलाओं को कोई भौतिक लीला नहीं मानते, इसलिए बड़ा आनंद लेते हैं। मृदंग पीछे रहते हैं। तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि क्या, कैसे और क्यों राक्षस विधि से क्यों किया। तो ये राक्षस विधि एक विधि है जिससे विवाह किया जाता है। मनुस्मृति में आठ प्रकार के विवाहों का वर्णन हुआ है, ब्राह्म, दैव, आर्ष और प्राजापत्य, और फिर उसके बाद आसुरी, फिर गंधर्व, और फिर राक्षस और पिशाच। ऐसे आठ विवाहों का वर्णन मनुस्मृति ने किया है। ब्राह्म विवाह की पद्धति जो होती है वो बड़ी श्रेष्ठ पद्धति मानी गई है। इनमें से जो पहले छह हैं अर्थात राक्षस और पिशाच को छोड़कर, ये ब्राह्मणों के लिए कहा गया है। ब्राह्मण जो होते हैं ये राक्षस पद्धति से विवाह नहीं कर सकते, उनको अनुमति नहीं है, ना ही पिशाच। वैसे पिशाच पद्धति को मनुस्मृति ने बड़ा अधम माना है, सबसे निचले स्तर का विवाह होता है, और दरअसल उस विवाह की अनुमति नहीं दी है, करना नहीं चाहिए ऐसा विवाह, लेकिन फिर भी उसको एक विवाह पद्धति माना है। तो ब्राह्म जो पहला विवाह है, अर्थात हमने बताया कि पहले छह प्रकार के विवाह ये ब्राह्मण कर सकते हैं, अंतिम चार प्रकार के विवाह ये वैश्य क्षत्रिय कर सकते हैं, क्षत्रियों को ये अनुमति है, और जो अंतिम पांच हैं इनमें से राक्षस पद्धति को छोड़कर बाकी जो विवाह हैं वो वैश्य और शूद्रों के लिए कहे गए हैं। ये मनुस्मृति है, इसमें मनुष्यों के लिए कैसे कार्य करना चाहिए, हर वर्ण में रहते हुए क्या करना चाहिए, ये बड़े विस्तार से दिया है। तो विवाह भी कैसे होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, ये सब वर्णन किया है। तो ब्राह्म विवाह वो होता है जहाँ पर बड़ा ही शुद्ध पुरुष जो कि वेदों में पारंगत है, वेदों के सार को जानता है, ऐसे पुरुष को आमंत्रित किया जाता है, अर्थात कन्या का जो पिता होता है वो आमंत्रित करता है ऐसे पुरुष को, ऐसे वर को, फिर उनकी पूजा की जाती है और फिर उनको कन्यादान किया जाता है। तो ऐसे विवाह को ब्राह्म विवाह कहते हैं। वैसे मनुस्मृति केवल इन विवाहों तक सीमित नहीं करती है अपने आप को, फिर इसका क्या फल होता है वो भी बताती है। अब हम लोग इतने विस्तार में नहीं जाएंगे, क्योंकि हर एक विवाह से जो उत्पन्न पुत्र होता है वो कितनी पीढ़ियों को उद्धार कर सकता है, ये बड़े विस्तार से वर्णन किया है। तो हम लोग आज विषय वो नहीं है, हम लोग श्री कृष्ण के विवाह पर ज़्यादा जोर देना चाहते हैं, लेकिन केवल संक्षेप में एक एक वाक्य में इन विवाहों का वर्णन भी कर देते हैं। तो ब्राह्म विवाह वो होता है, दूसरा होता है दैव विवाह। दैव विवाह वो होता है जहां पर जो व्यक्ति यज्ञ में यज्ञ करने में पारंगत है उस व्यक्ति से जब कन्या का विवाह कराया जाता है तो ऐसा विवाह दैव विवाह कहलाता है। तो पहला है ब्राह्म विवाह, दूसरा है दैव विवाह और तीसरा है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में ये थोड़ा सा अलग है, बाकी दोनों जो ऊपर के विवाह हैं उसमें दिया जाता है। आर्ष विवाह में वर से गाय दान में ली जाती है, पहले गाय दान में लेते हैं और फिर कन्या दान देते हैं। ऐसी बहुत सी पद्धतियां हैं, हमने सुना भी नहीं है लेकिन ये पद्धतियां हैं। हाँ, आजकल जो विवाह होते हैं वो इन आठों पद्धतियों के परे हैं, इसलिए आप ये प्रश्न मत पूछिएगा कि उसके घर में विवाह हुआ था वो कौन सी पद्धति में आता है, क्योंकि आजकल कोई पद्धति का पालन ही नहीं हो रहा है। कलौ शूद्र संभवः, तो इसलिए कोई पद्धतियों का पालन नहीं है। तो ऐसी आर्ष पद्धति होती है। और चौथी कहलाती है प्रजापत्य। प्रजापत्य मतलब जहां वर और वधु इतने ज्यादा धर्म का पालन नहीं करते तो विवाह के संबंध के द्वारा मनुस्मृति कहते हैं कि एक उनको प्रतिज्ञा दिलाई जाती है कि आज के बाद अब आप दोनों मिलकर सहयोग से धर्म का आचरण करेंगे, और उसके बाद वे लोग सही प्रकार से धर्म का आचरण करते हैं। तो ऐसे इसको प्राजापत्य कहा जाता है, अर्थात जिससे आगे चलकर अच्छे धार्मिक प्रजा की उत्पत्ति होती है, तो ये प्रजापत्य कहलाता है। तो ऐसे चार प्रकार के हैं। और फिर उसके बाद होता है आसुर। आसुर मतलब जब किसी पुरुष को कोई स्त्री प्रिय लगती है, वो उससे विवाह करना चाहता है तो उसके बदले में कुछ धन देता है, कुछ शुल्क देता है और फिर कन्यादान किया जाता है, इसको आसुरी विवाह कहते हैं। आप लोगों को स्मरण होगा जब हम रामायण की कथा कर रहे थे तो हम लोगों ने वर्णन किया था, सुना था कि कैसे दशरथ महाराज ने कैकई से जब विवाह किया तो कन्या शुल्क दिया था। तो ये एक प्रकार का विवाह। फिर छठा विवाह होता है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह मतलब जहां पुरुष और स्त्री एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर आपस में सहयोग से या एक समझौता करके या एक दूसरे को कुछ आदान प्रदान करके फिर वे लोग विवाह कर लेते हैं, अर्थात पुरुष और स्त्री की पसंद से ये विवाह किया जाता है, तो इसको गंधर्व विवाह कहते हैं। सातवां विवाह राक्षस विवाह, राक्षस विधि, अर्थात जबरदस्ती किसी स्त्री को या कन्या को उठाकर ले जाना, कभी उसकी अनुमति से या कभी बिना अनुमति के भी, लेकिन जो घर वाले हैं वो तो विरोध करते हैं तो इसको राक्षस विवाह कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया, ये राक्षस विवाह पद्धति थी, क्योंकि घर वाले नहीं चाहते थे, हाँ लेकिन रुक्मिणी देवी चाहती थी, मगर फिर भी हरण किया जबरदस्ती, तो ये एक राक्षस विवाह होता है। और अंतिम विवाह की पद्धति है मनुस्मृति के अनुसार पैशाच विवाह, पिशाचों का, जहां पर मनुस्मृति वर्णन करती है कि अगर कोई स्त्री नींद में है या कोई कन्या नशे में है, उस अपने ठीक से होश में नहीं है, ऐसी कन्या से विवाह कर लेना, अर्थात ना तो उस कन्या की अनुमति है और ना ही वो कन्या अपनी रक्षा कर पाती है, ऐसी स्थिति में जब विवाह कर लिया जाता है जबरन तो वो पिशाच विवाह कहलाता है। और ऐसे विवाह को बड़ा अधम माना गया है, अर्थात बाकी सारे विवाहों में प्रायः वधु या जो कन्या होती है उसकी अनुमति होती है, इसलिए उसको श्रेष्ठ माना गया है। जहां वधु की अनुमति नहीं होती है वो श्रेष्ठ नहीं माना जाता। तो ऐसे अलग अलग विवाहों का, और फिर इनके क्या फल होते हैं इसका भी बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है मनुस्मृति में। ये जो नियम है मनुष्यों के लिए दिए हैं शास्त्रों में, ये हमारे दैनिक जीवन को चलाने के लिए हैं। और अगर कोई इनका पालन करता है बड़ी कड़ाई से, ये जितना हो सके उतना, तो निश्चित है कि जीवन में वो आनंद की प्राप्ति करता है और इस जीवन की सफलता को भी प्राप्त करता है। आज के समाज में हम लोगों ने इन सारे नियमों को, शास्त्रों को त्याग दिया है, कोई पद्धति का पालन नहीं करते और इसीलिए कष्ट हैं जीवन में। तो ऐसे अलग अलग पद्धतियां हैं जिनमें एक राक्षस पद्धति भी है। तो परीक्षित महाराज का ये प्रश्न था कि भगवान ने राक्षस पद्धति से रुक्मिणी देवी का हरण किया, विवाह किया, कृपया उसको विस्तार से बताइए। तो फिर कथा तो आप सब जानते हैं, इसलिए हम विस्तार में नहीं जाएंगे क्योंकि आगे भी विवाह कराने हैं। लेकिन संक्षेप में विवाह और उसका संदेश रुक्मिणी देवी ने भगवान के विषय में सुना, उनके प्रति आसक्त हुई। रुक्मिणी देवी का विवाह किसी और से, शिशुपाल इत्यादि से करने का निश्चय हुआ। और फिर रुक्मिणी देवी ने एक संदेश भेजा, एक ब्राह्मण को भेजा जो उनका सुहृद था। कहना चाहिए कि उनका गुप्त संदेश बिना किसी को बताए श्री कृष्ण तक लेकर गया। और फिर श्री कृष्ण को जब ये पता चला तो श्री कृष्ण आए और उन्होंने रुक्मिणी का हरण कर लिया। कई बार ये कथा हम लोग कह चुके हैं। वैसे ही कथा इतनी रोचक है कि अभी बोलते समय भी हमारे मन में इच्छा हो रही है कि फिर से विस्तार से कहना चाहिए। इतनी आनंद देने वाली ये कथा है। तो खैर, इससे शिक्षा क्या मिलती है? रुक्मिणी देवी इस पूरे प्रसंग में, इस लीला में, अपने आचरण से या इस लीला के द्वारा हमको क्या शिक्षा दे रही हैं? सबसे पहली शिक्षा, रुक्मिणी देवी का आकर्षण श्री कृष्ण के प्रति क्यों हुआ? श्रवण। उन्होंने केवल सुना था, देखा नहीं था श्री कृष्ण को, मिले नहीं थे श्री कृष्ण से। केवल जो कुछ लोग आते श्री कृष्ण को देखकर वृंदावन से या फिर अन्य स्थान से, जहां भी श्री कृष्ण को उन्होंने देखा, आकर वो बताते रुक्मिणी देवी को, बहुत सुंदर हैं श्री कृष्ण, ऐसी ऐसी लीला करते हैं, बड़े मधुर हैं। तो ऐसे सुन सुन कर केवल उनका आकर्षण बड़ा तीव्र हुआ। तो ये पहली शिक्षा वो हमें प्रदान करती हैं कि जब हम श्री कृष्ण के बारे में सुनते हैं, किन से? जो श्री कृष्ण के धाम से आ रहे हैं, अर्थात श्री कृष्ण के प्रतिनिधि, श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त, जैसे श्रील प्रभुपाद। तो ऐसे व्यक्तियों से जब हम श्रवण करते हैं, जब हम श्री कृष्ण के बारे में सुनते हैं, तो जो तीव्रता रुक्मिणी देवी के हृदय में हुई श्री कृष्ण को प्राप्त करने की, हमारे हृदय में भी जागृत होती है। और इसका प्रमाण क्या है? श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देशों में गए, उन्होंने श्री कृष्ण का संदेश सुनाया। वहां तो कोई जानता नहीं था श्री कृष्ण को, कभी देखा नहीं था, कभी मिले नहीं थे, सुना भी नहीं था, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने सुनाया और उसके द्वारा श्री कृष्ण को पाने की इतनी तीव्र इच्छा उनके हृदय में हुई कि उन्होंने सारे अपने भौतिक जीवन को समाप्त कर दिया और भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण किया। तो ये प्रमाण है कि केवल श्रवण के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली चीज उन्होंने दर्शाई कि कैसे हमें श्रवण में रुचि होनी चाहिए। उनको बहुत रुचि थी, वो सुनती थी बुला बुला कर। अगर उन्हें पता चलता कि कोई आए हैं ब्रज से, कोई आए हैं मथुरा से, तो बुलाया करती थी और बताइए श्री कृष्ण के बारे में। तो जब सबको पता भी चल गया तो फिर वे लोग बार बार जाया करते रुक्मिणी के पास और बताते श्री कृष्ण के बारे में। तो तीव्रता पहला संदेश इनके विवाह से। फिर आगे चलकर जब उन्होंने उनके हृदय में कृष्ण को पाने की तीव्रता हुई तो बाधाएं, शिशुपाल आ गए। तो शिशुपाल भक्ति में आने वाली बाधाओं के सूचक हैं, क्योंकि जब हम भक्ति तीव्रता से करना चाहते हैं, श्रवण कर लेते हैं, हम ये जान लेते हैं कि हाँ अब हमें भक्ति करनी है, अब हमें श्री कृष्ण को पाना है, तो बड़ा सरल होना चाहिए। क्योंकि साधारणतः जैसे हम बता रहे थे कि जब विवाह होते हैं तो वधु की अनुमति ली जाती है, तो फिर रुक्मिणी के लिए तो बड़ा सरल था कि वो अपने पिता से कहती कि मैं श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती हूँ, और फिर उनका विवाह हो जाता। लेकिन भक्ति इतनी सरल नहीं है, श्री कृष्ण को पाना इतना सरल नहीं है, इसीलिए बाधाएं, इसीलिए शिशुपाल आए। तो हम सबको भी ये जानना चाहिए कि भक्ति हम कर रहे हैं, जप हम कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी श्रवण भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तीव्रता बनाए रखनी चाहिए उन बाधाओं में भी जो हमारे भक्ति के जीवन में आती हैं। अब रुक्मिणी के लिए कितनी बड़ी बाधा थी, श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहती थी, श्री कृष्ण को जानती नहीं थी, कोई उनका आदान प्रदान नहीं था, और ऐसे में विवाह निश्चित हो गया, शिशुपाल से विवाह होगा कह दिया गया, कोई सम्मति नहीं ली गई, और दिन भी निश्चित हो गया, बस अब दो दिन में विवाह होने वाला। तो सोचिए रुक्मिणी देवी के लिए कृष्ण को पाने की कितनी बड़ी बाधा थी, दो दिन केवल, बस अगर कृष्ण नहीं आते हैं तो फिर वे कभी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाएंगी। तो ऐसी ही बाधाएं हमारे जीवन में आती हैं, कुछ ही चीज हम थोड़ा सा दूर रह जाते हैं कृष्ण से, थोड़ी बहुत बाधाएं आती हैं, हम सोचते हैं कि भक्ति संभव नहीं है। तो भक्ति में आने वाली बाधाएं ये शिशुपाल हैं। तो फिर कैसे इन बाधाओं को पार किया, क्या किया रुक्मिणी ने? रुक्मिणी ने एक संदेश भेजा। संदेश क्या था? अपने हृदय की भावनाओं को उसने एक पत्र में लिखा और एक ब्राह्मण के हाथ में श्री कृष्ण के पास भेज दिया। तो जब हमारे भक्ति के जीवन में बाधाएं आती हैं, हम भी यही कर सकते हैं, हम श्री कृष्ण के पास अपने हृदय की भावनाओं को, अपने हृदय की तीव्रता को गुरु और गुरु की सेवा के द्वारा कृष्ण तक पहुंचा सकते हैं। जैसे रुक्मिणी ने ब्राह्मण को गुरु बनाया, अब वही थे उनके लिए, एक ही आस थी, और कोई उपाय नहीं था रुक्मिणी के लिए, और कोई सहायता करने वाला नहीं था रुक्मिणी के लिए, कोई और सुविधा नहीं थी रुक्मिणी के लिए, एक ही आशा थी, केवल वो ब्राह्मण। तो जब हम लोग भक्ति प्रारंभ करते हैं, हमारे लिए भी एक ही आशा होनी चाहिए, श्री गुरु चरण पद्म, श्री गुरु के चरण कमल, एक ही आशा, आर न करी हमने आशा। हम लोग ये रोज गाते हैं लेकिन इसके अर्थ को नहीं समझते। रुक्मिणी देवी समझा रही हैं कि केवल एक ही आशा, और उनको पूर्ण आशा केवल इस ब्राह्मण पर थी, और कुछ नहीं। अगर ये ब्राह्मण बिना श्री कृष्ण से मिले या बिना श्री कृष्ण का संदेश दिए वापस आ जाता है, तो फिर रुक्मिणी देवी तैयार थी जहर खाने के लिए। इसी तरह जब हम दुविधा में होते हैं, कष्टों में होते हैं, तो हमें अपने हृदय के भावों को प्रार्थनाओं के द्वारा, सेवाओं के द्वारा और गुरु के आदेश के पालन के द्वारा श्री कृष्ण तक पहुंचाना चाहिए। श्री कृष्ण तक हमारे भाव कैसे पहुंचते हैं? रुक्मिणी ने तो पत्र लिखा, और पत्र भी कितना सुंदर था, हम लोग कुछ वर्ष पहले इस पत्र पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। एक एक श्लोक में बहुत ज्ञान दिया रुक्मिणी देवी ने, वो कोई साधारण प्रेम पत्र नहीं था। तो फिर जिस प्रकार रुक्मिणी ने किया वही हमें करना है, हमें अपने भावों को श्री कृष्ण तक प्रार्थनाओं के द्वारा, गुरु के आदेशों का पालन करने के द्वारा और सेवा के द्वारा श्री कृष्ण तक पहुंचा देना है। तो गुरु वो ब्राह्मण है जो हमारे भावों को एक पत्र के रूप में ले जाएंगे श्री कृष्ण तक, जैसे रुक्मिणी के ले गए वो। और फिर जब श्री कृष्ण ने देखा, इस पत्र को पढ़ा, तो तुरंत तैयार हो गए। श्री कृष्ण ने एक क्षण भी व्यर्थ नहीं किया, जैसे ही पत्र पढ़ा ब्राह्मण ने तुरंत तैयार हो गए। तो जिस प्रकार ब्राह्मण के उस पत्र को पाते ही रुक्मिणी की रक्षा करने के लिए, रुक्मिणी का हरण करने के लिए भगवान आए, इसी प्रकार जब हम अपनी सेवा के द्वारा, गुरु के आदेश के निर्देश, गुरु के आदेशों का पालन के द्वारा और प्रार्थनाओं के द्वारा, शुद्ध प्रार्थनाओं के द्वारा, हृदय से की गई प्रार्थनाओं के द्वारा जब अपने भावों को भगवान के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, तो भगवान एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करेंगे और आकर हमें इस, ये जो माया जाल है, ये जो संसार है, जो कष्टों का सागर है, इससे लेकर चले जाएंगे। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मैयावेशित चेतसाम। भगवान ने वचन दिया कि अगर ऐसे लोग, तेषाम, इसलिए भगवान ने सबके लिए नहीं कहा, तेषाम अहम समुद्धरता, तो वो कौन तेषाम है, कौन लोग हैं जिनका वर्णन भगवान कर रहे हैं? ऐसे लोग जिन्होंने अपने भावों को निश्चल निस्वार्थ सेवा के द्वारा, गुरु के आदेशों के शतशः पालन के द्वारा और प्रार्थनाओं के द्वारा श्री कृष्ण तक पहुंचाया है, ऐसे लोगों को तेषाम अहम समुद्धरता, श्री कृष्ण कहते हैं मैं आऊंगा उनका उद्धार करने, और भवामी न चिरात पार्थ, देर नहीं करूंगा, एक क्षण भी नहीं लगाऊंगा, जैसे उन्होंने रुक्मिणी की रक्षा के लिए एक क्षण भी नहीं लगाया, तुरंत पहुंच गए। तो जैसे रुक्मिणी का हरण श्री कृष्ण ने सारे पापी राजाओं के मध्य से किया, जो उनको छीन लेना चाहते थे श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण ने छीन लिया, पुनः प्राप्त किया। वैसे तो वो नित्य संगिनी हैं श्री कृष्ण की, इसलिए कहना चाहिए पुनः प्राप्त किया। इसी प्रकार हम सब भी श्री कृष्ण के नित्य दास हैं, और अगर हम ऐसे कार्य करेंगे तो श्री कृष्ण भी आकर इन सारे लोगों को, ये जो भौतिकवादी लोग हैं जो हमें खींच लेना चाहते हैं, इनसे हमें पुनः प्राप्त कर लेंगे। पुनः प्राप्त करने का अर्थ क्या है? हम तो हैं ही कृष्ण के अंश हैं हम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, सनातन अंश है श्री कृष्ण के। लेकिन क्योंकि इस जगत में आए हैं, यहां कष्टों में हैं, इसलिए कृष्ण पुनः प्राप्त करेंगे हमें, ले जाएंगे हमें खींच कर, हरण करके हमारा अपने धाम। तो ये रुक्मिणी हरण की शिक्षा है। तो ऐसे भगवान ने रुक्मिणी देवी का हरण किया और फिर ले गए द्वारका में, और फिर उनका विवाह हुआ। तो ये पहला विवाह रुक्मिणी देवी के साथ उन्होंने किया। दूसरा विवाह उनका हुआ था जाम्बवती के साथ। अब इसका भी सुखदेव गोस्वामी ने बड़े विस्तार से वर्णन किया है कि ऐसा हुआ था कि सत्रजीत जो रहता था नाम का राजा, वो सूर्य देव का भक्त था, और सूर्य देव ने एक मणि उसे दी थी, श्यामंतक मणि, बड़ी तेज, उसको केवल पहन लेने से ऐसा प्रतीत होता था मानो सूर्य देव प्रकट हो गए, बहुत तेज था। और इतना ही नहीं, हर रोज वो 17 पाउंड सोना दिया करती थी, नहीं अच्छी थी, अगर आजकल मिल जाता हम लोगों को तो कितना बढ़िया था, कई मंदिर बना देते भगवान के हम लोग। तो 17 पाउंड सोना, आजकल तो सोने का भाव भी ज्यादा है। और जहां वो थी श्यामंतक मणि, जिस स्थान पर, वहां ना किसी को प्यास लगती थी ना भूख लगती थी, वहां कभी ना अकाल पड़ता था, और साथ ही साथ जिस स्थान पर, जिस मंदिर में रखी गई थी, वहां पर भी कभी कोई पशु या कोई प्राणी आक्रमण नहीं कर सकता था केवल उस मणि के प्रभाव से। तो एक समय श्री कृष्ण ने, और ये सत्रजीत तो जो था ही बहुत उसको दिखाया करता था, उसको पहन कर ऐसे घूमा करता था सब जगह। तो एक समय श्री कृष्ण ने सत्रजीत से कहा कि देखो जो सर्वश्रेष्ठ चीजें होती हैं वो राजा के लिए होती हैं, तो ये चीज तुम राजा उग्रसेन को उपहार में दे दो। सत्रजीत ने स्वीकार नहीं किया, कौन करेगा रोज का 17 पाउंड सोना और फिर इतना तेज और इतने सारे अन्य गुण। तो खैर श्री कृष्ण ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक समय ऐसा हुआ कि सत्रजीत के भाई थे प्रसेन, उन्होंने इसको धारण किया और जंगल में चले गए आखेट के लिए, पशु को मारने के लिए। लेकिन इस बार उल्टा हुआ, पशु ने मार दिया उन्हें, एक शेर से भिड़ गए और शेर ने उनको मार डाला। और शेर को ये मणि बहुत पसंद आई तो शेर लेकर चला गया। लेकिन उस शेर को फिर जांबवंत ने मारा। जांबवंत आप जानते हैं ना, पिछले मंगलवार हमने उसकी कथा कही थी कि कैसे प्रकट हुए थे जांबवंत, और वो तब से हैं, चिरायु हैं वो, तो कृष्ण लीला में भी आए थे। रामचंद्र जी की लीला में तो थे ही, कृष्ण लीला में भी आए। तो जांबवंत मिले, जांबवंत ने शेर को समाप्त कर दिया और उनको अच्छा लगा कुछ खिलौना तो ले गए और अपने बच्चे को खेलने के लिए दे दिया। पद्म पुराण में वर्णन करते हैं, भागवत में तो वर्णन नहीं है, पद्म पुराण में वर्णन किया कि जब श्री कृष्ण वहां पहुंचे, ये आगे वर्णन आएगा, तो जांबवंत का जो बच्चा था जो पालने में खेल रहा था उसके ऊपर मणि लगी हुई थी, और उसकी जो पत्नी थी वो एक श्लोक बनाकर गा रही थी और वो कह रही थी कि प्रसेन को शेर ने मारा, शेर को जांबवंत ने मारा, और अब ये जो मणि है ये तुम्हारे लिए लाए हैं, तुम रो मत, ये तुम्हारे पास ही रहेगी, कोई लेकर नहीं जाएगा। ऐसे उसने बहुत सुंदर श्लोक बनाया, पद्म पुराण में वर्णन है। तो खैर जांबवंत के पास आ गया, बच्चे को खेलने के लिए दे दिया। अब जब सत्रजीत को पता चला तो उसने श्री कृष्ण के ऊपर आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया? श्री कृष्ण के ऊपर आरोप लगाया कि श्री कृष्ण ने ये चोरी की है, क्योंकि पहले मांगा था मैंने दिया नहीं, तो मेरे भाई का वध भी कर दिया और इसको चोरी करके रख लिया है। और ये बात धीरे धीरे फैलने लगी द्वारका में। भागवत में तो वर्णन नहीं किया, लेकिन पद्म पुराण में वर्णन किया है कि श्री कृष्ण के ऊपर ये इल्जाम क्यों लगा। तो कहते हैं कि भाद्र महीने में उन्होंने शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देख लिया था। तो पद्म पुराण में मना किया है कि इस दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर देख लेंगे तो आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लग जाएगा, जैसे श्री कृष्ण पर लगा। तो श्री कृष्ण के ऊपर इल्जाम लगा कि इन्होंने मार दिया और चोरी कर ली। तो जब श्री कृष्ण ने ये बात सुनी तो उन्होंने सोचा कि इसको दूर करना चाहिए, ये लोगों के मन में बातें आ रही हैं। तो फिर वे अपने कुछ साथियों को लेकर वन में प्रवेश कर गए, और फिर थोड़े आगे जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ पर प्रसेन मृत पड़े थे, और फिर थोड़ा और आगे गए तो देखा कि वहाँ पर शेर भी मृत पड़ा था। तो फिर आगे एक गुफा दिखाई दी जो जांबवंत की गुफा थी। तो श्री कृष्ण ने बाकी लोगों से कहा आप बाहर रहो, और वो गुफा में प्रवेश कर गए। तो जब गुफा में उन्होंने प्रवेश किया तो देखा कि एक छोटा बच्चा उस मणि के साथ खेल रहा है, शामंतक मणि के साथ, या पद्म पुराण के अनुसार वो पालने में लेटा था और मणि वहाँ टंगी थी, और उसकी जो पत्नी थी वो श्लोक गा रही थी कि चिंता नहीं करो, कोई नहीं लेके जाएगा, रोना नहीं। तो उस समय श्री कृष्ण ने बहुत जोर से अपना शंख बजाया तो जांबवंत वहां आए। अब जांबवंत पहचान नहीं पाए कि वही मेरे स्वामी हैं, तो उन्होंने उनको चुनौती दी और युद्ध प्रारंभ हुआ। तो भागवत कहता है कि 28 दिन तक युद्ध चला दोनों का, भगवान और भक्त का, और बहुत तीव्र, और भगवान भी आनंद ले रहे थे, और जो बाहर खड़े लोग थे वो 3-4 दिन 5 दिन खड़े रहे, फिर उन्हें लगा कि कुछ तो अब शकुन कुछ हो गया है, कुछ गलत बात हो गई है, तो वे वापस चले गए। जाकर उन्होंने संदेश दिया नगरी में कि ऐसे ऐसे श्री कृष्ण भी वहां गए, वो वापस ही नहीं आए। तो सब लोग बड़े दुखी हो गए, प्रार्थनाएं करने लगे कि कैसे तो श्री कृष्ण वापस आ जाएं। और इधर श्री कृष्ण 28 दिन तक युद्ध करते रहे, और 28 दिन के बाद जब जाम्बवंत हारने लगे, तब जाम्बवंत को समझ में आया कि ये कोई साधारण व्यक्ति हो नहीं सकते, मुझे कोई साधारण व्यक्ति हरा नहीं सकता, वो भी इस युग का। तो फिर उन्होंने श्री कृष्ण को समर्पण किया और बहुत सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण की। जाम्बवंत ने कहा कि अब मैं जान गया हूं कि आप वही हैं, वही श्री राम जो पहले आए थे और फिर पत्थरों के द्वारा आपने सेतु बांधा था, रावण की हत्या की थी, आप वही हैं, मुझे क्षमा कीजिए। और फिर श्री कृष्ण ने उनको अपना दिव्य स्वरूप के दर्शन दिलाए। फिर उसने श्री कृष्ण को ये मणि वापस दी और साथ ही साथ अपनी कन्या जाम्बवती उसको भी अर्पण किया। और फिर श्री कृष्ण वापस आए और फिर उनका विवाह जाम्बवती से हुआ। तो ये दूसरा विवाह था श्री कृष्ण का, जब उन्होंने जाम्बवती से विवाह किया। तो ये देखिए जाम्बवंत की भावना, हालांकि उसने युद्ध किया, भगवान को पहचान नहीं पाए, भगवान से युद्ध किया, लेकिन जब जान गए तो फिर उन्होंने पूर्ण समर्पण किया भगवान को और अपनी कन्या उनको अर्पण की। इसी तरह जब हम लोग अज्ञान में होते हैं, माया में होते हैं, शास्त्र नहीं पढ़ते, केवल मनगढ़ंत ढंग से भावनाओं के स्तर पर भगवान की भक्ति करते हैं, भावुक होकर भक्ति करते हैं, तो फिर हम श्री कृष्ण को समझ नहीं पाते। सामने होते हुए भी हम उनको जान नहीं पाते कि ये वही परम भगवान हैं। लेकिन जब हम संघर्ष करते हैं श्री कृष्ण को पाने के लिए, इंद्रियों से संघर्ष, अपनी इच्छाओं से संघर्ष, मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, जब हम संघर्ष करते हैं और हमारा उद्देश्य श्री कृष्ण की प्राप्ति होता है, उद्देश्य श्री कृष्ण को प्रसन्न करना होता है, जैसे जाम्बवंत भक्त थे, उनके सारे कार्य केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए थे, जाने अनजाने में किए गए कार्य भी श्री कृष्ण को प्रसन्न करते हैं। तो ऐसे अगर हम अपने कार्य केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें, संघर्ष करें, युद्ध करें अज्ञान से जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, तो उस युद्ध के बाद हम जान पाएंगे। और युद्ध का परिणाम क्या होगा? युद्ध में विजय नहीं, समर्पण। भौतिक जगत में युद्ध का परिणाम विजय होता है, तब व्यक्ति को विजय माना जाता है अगर वो जीत जाए। आध्यात्मिक जगत में इस युद्ध में समर्पण होना चाहिए श्री कृष्ण को, विजय इंद्रियों पर होनी चाहिए, व्यक्ति को जितेंद्रिय होना चाहिए, लेकिन समर्पण श्री कृष्ण के प्रति। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस जगत में विजय प्राप्त करने के लिए, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए, जितात्मना बनने के लिए श्री कृष्ण को समर्पण करना चाहिए। जो व्यक्ति समर्पण कर देता है वो विजेता कहलाता है। उसके हृदय के भावों को श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं। जब तक वो युद्ध करता रहा श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण ने कुछ स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब जाम्बवंत ने समर्पण किया तो श्री कृष्ण ने उसकी पुत्री को स्वीकार किया। इसी तरह जब हम भगवान को समर्पण करते हैं तब भगवान हमें स्वीकार करते हैं, अन्यथा हम केवल संघर्ष करते हैं इस जगत में अपने सत्ता को बनाए रखने के लिए, अपने इच्छाओं को बनाए रखने के लिए। तो इस तरह से जाम्बवती के साथ उनका विवाह हुआ। अब जब श्री कृष्ण वापस आए तो उस मणि को भी लेकर आए और उस मणि को फिर अपने पास नहीं रखा, फिर से वापस दे दिया सत्रजीत को, जाओ ये तुम्हारी मणि है, ले लो, रखो। तो उस समय सत्रजीत को बड़ी ही ग्लानी हुई। सत्रजीत ने सोचा ही मैंने क्या किया, श्री कृष्ण के ऊपर मैंने आरोप लगाया, उन्होंने चोरी की और सारे लोग कहने लगे कि देखो कैसे सत्रजीत ने गलती की, श्री कृष्ण ने तो कुछ नहीं किया था और श्री कृष्ण ही लेकर आए और वापस भी कर दिया। हम उस दिन भी वर्णन कर रहे थे पिछले रविवार को कि देना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमें देना सीखना चाहिए, देने में श्रेष्ठता होती है, देने वाला महान कहलाता है, संग्रह करने वाला महान नहीं कहलाता, लेने वाला महान नहीं कहलाता, देने वाला। जैसे हम लोग सुनते हैं कि असुरों को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया तो ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं इसीलिए देते हैं, एक श्रेष्ठ व्यक्ति ही दे सकता है। तो जब श्री कृष्ण ने दे दिया, रखा नहीं, तो श्री कृष्ण का गुणगान लोग करने लगे। तो फिर ऐसे समय में बड़ा अपने आप को ग्लानी उसके हृदय में होने लगी कि ये मैंने क्या किया, श्री कृष्ण के प्रति मैंने ऐसे अपराध किया, तो फिर उस अपराध का मुझे अब तो कोई प्रायश्चित करना चाहिए। तो क्या प्रायश्चित किया, उसने सोचा कि मैं ये जो मणि है ये मैं श्री कृष्ण को वापस दे देता हूँ, और इतना ही नहीं साथ साथ अपनी पुत्री जो बहुत सुंदर थी सत्यभामा उसको भी श्री कृष्ण को समर्पित कर देता हूँ। तो ऐसे ये भगवान का तीसरा विवाह हुआ। नाम याद है ना आपको, कितने विवाह हो गए, किस किस के? रुक्मिणी, जाम्बवती और सत्यभामा, क्रम से जाएंगे, क्रम से तो याद भी हो जाएंगे आपको, जैसे जैसे कि पहले रुक्मिणी से किया, फिर सत्रजीत की वजह से जाम्बवती से हुआ और फिर सत्यभामा से, ऐसे तीन विवाह हो गए। अब उधर हस्तिनापुर में ऐसा हुआ था कि लाक्षाग्रह की लीला हो चुकी थी। लाक्षाग्रह की लीला तो आप सब जानते हैं कि जब पांडवों को लाक्षाग्रह में जलाकर मारने का षड्यंत्र रचाया गया था और उसके बाद कई वर्षों तक पता नहीं था वो कहाँ हैं, काफ़ी समय तक सब सोच रहे थे कि वे तो मर चुके हैं, अब तो वापस नहीं आएंगे, और श्री कृष्ण और बलराम जी भी बाहर से यही शोक कर चुके थे, वे तो जानते थे लेकिन बाहरी तौर से एक शोक कर चुके थे कि हाँ अब पांडव तो आएंगे नहीं। और फिर कुछ समय बाद पांडव वापस आ गए, तो जब पांडव वापस आए तो सब लोगों ने बहुत उत्सव मनाए, सब बड़े प्रसन्न हुए, तो श्री कृष्ण और बलराम भी उन लोगों से मिलने गए। ये लाक्षाग्रह के बाद की कथा है। तो पांडवों से मिले, वहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन किया है कि श्री कृष्ण के आचरण का, वो किस प्रकार हर एक से आचरण करते थे। युधिष्ठिर और भीष्म के चरणों का स्पर्श किया, अर्जुन से गले मिले और नकुल और सहदेव के आतिथ्य को या आदर को स्वीकार किया। तो यहाँ पर ये वर्णन है कि हमें हर एक व्यक्ति के साथ उसके स्तर के अनुसार आचरण करना चाहिए। रूप गोस्वामी भी उपदेशामृत में कहते हैं कि कैसे हमारा आचरण होना चाहिए, तो वो कहते हैं कि ऐसा भक्त जो अभी अभी नवदीक्षित भक्त है लेकिन कम से कम कृष्ण का नाम ले रहा है, कृष्णे तीयस्य गिरितम मनसाद्रियेत, तो उसको मन से आदर करना चाहिए। कोई भी क्यों ना हो, अगर वो कृष्ण का नाम ले रहा है तो उसको मन से आदर करना चाहिए, इसकी दीक्षा हो जाए उसको प्रणाम करना चाहिए, और फिर जो उत्तम अधिकारी है अर्थात जो शुद्ध भक्त है उसकी शरण जाना चाहिए। तो अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग प्रकार का आचरण होना चाहिए, और श्री कृष्ण स्वयं दिखलाते हैं, हालांकि वो भगवान हैं, उन्हें किसी के चरण स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी एक लोक नीति के कारण जग में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए वे स्वयं इस कार्य को करते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने किया। चैतन्य महाप्रभु भी जब आए तो उन्होंने ऐसे ही, गृहस्थ थे तो बड़े अच्छी तरह से गृहस्थ जीवन का आचरण किया, जब सन्यासी हुए तो बड़े कड़क सन्यासी बने, तो ऐसा हमें भी करना चाहिए अपनी अपनी स्थिति के अनुसार। जो ब्रह्मचारी हैं वो ब्रह्मचारी व्रत का पालन करें, जो गृहस्थ हैं वो गृहस्थ नियमों का पालन करें, और जो सन्यासी हैं वो सन्यास के नियमों का पालन करें। इसी से समाज बड़े सुव्यवस्थित तरीके से चल सकता है। तो हम जहाँ हैं, जिस स्तर पर हैं, उस स्तर के आचरण करने से सारे समाज में सुव्यवस्था होती है। इसीलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं पर धर्मो भयावह, अपने स्थान के अपने स्तर के धर्म को त्यागना नहीं चाहिए, नहीं तो उत्पात होता है। जैसे हम वृंदावन इत्यादि में देखते हैं कई अपसंप्रदाय हैं जो अपने स्तर की भक्ति नहीं करते, अपने स्तर से कहीं ऊंची भक्ति पर कूद लगाने का, छलांग लगाने का प्रयास करते हैं। अभी तो वो जानते भी नहीं है कि श्री कृष्ण कौन है, वैदिक भक्ति क्या है कभी सुना नहीं है, लेकिन प्रयास करते हैं श्री कृष्ण की रासलीला में प्रवेश करने का जो सर्वोच्च लीला है। उत्पात होता है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि हमें श्रुति स्मृति इन सब पुराण आदि पंचरात्रम विधिम विना एकांत की हरेर भक्ति उत्पात एव कल्पते, केवल उत्पात होता है। तो श्री कृष्ण ने दर्शाया और फिर पांडव भी बड़े प्रसन्न हुए। पांडवों ने फिर उनसे प्रार्थना की कि आप कुछ समय यहाँ रहिए, क्योंकि बहुत समय से देखा नहीं था श्री कृष्ण को। तो फिर श्री कृष्ण वहीं रहे और एक समय अर्जुन के साथ वे शिकार के लिए गए, आखेट के लिए गए वन में। अब अर्जुन क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों को शिकार की आखेट की अनुमति दी जाती है। किस लिए? इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, क्षत्रियों को आखेट की अनुमति दी जाती है। इसका पहला कारण ये है कि उन्हें युद्ध करने का अभ्यास हो सके। अगर हमें अभ्यास नहीं है युद्ध करने का और अचानक कोई राजा आक्रमण कर देता है तो क्षत्रिय कैसे रक्षण करेंगे अपनी प्रजा का? और क्षत्रिय का तो प्रमुख धर्म है रक्षा करना, प्रजा की रक्षा, क्षात्र धर्म है वो। तो इसलिए पहला कारण उनके आखेट का, या उनको अनुमति दी गई थी कि वे जाकर शिकार कर सकते हैं पशुओं का, तो ये थी कि उसके द्वारा वे अभ्यास करें ताकि प्रजा की रक्षा हो सके। दूसरा कारण उनको आखेट की अनुमति देने का ये था कि अगर वे आखेट नहीं करते थे तो जंगल में बहुत सारे ऐसे हिंसक पशु जो होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती, और हिंसक पशुओं की संख्या बढ़ने से फिर कभी कभी वे लोग समाज को नुकसान पहुंचा सकते थे। वे लोग जंगल से बाहर आ जाते और फिर मनुष्यों पर आक्रमण करते, ये भी एक कारण श्रील प्रभुपाद बताते हैं। और तीसरा और महत्वपूर्ण कारण जिसके लिए अर्जुन ने आखेट किया कि ऐसे पशुओं की बलि यज्ञ में दी जाती थी। तो अर्जुन, श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि जब अर्जुन ने ऐसे बहुत से पशुओं को मार दिया, आखेट हो गया, तो उन सब को उन्होंने भेज दिया युधिष्ठिर महाराज के पास ताकि वो यज्ञ में उनकी बलि दे सके, उनका उपयोग कर सके। तो इसलिए भी आखेट किया जाता था। आजकल लोग केवल नकल करते हैं, हम क्षत्रिय हैं, हमें मांस खाने की अनुमति है, हमें शराब पीने की अनुमति है, लेकिन रक्षा करना हमारा काम नहीं है। ऐसा नहीं है, अनुमति नहीं दी जाती थी पाप करने की, लेकिन कई कारणों से ये अनुमति दी गई थी। राजा थे, राजा को राज्य करना है, इसलिए अनुमति दी गई थी। तो इन चीज़ों को, इन तत्वों को समझना चाहिए, बिना समझे ऐसे चीज़ों को अपना नहीं लेना चाहिए। नाम के क्षत्रिय हैं और काम केवल खाना पीना करना, ये ठीक नहीं है। अर्जुन ने खाने के लिए कभी पशु को नहीं मारा, लेकिन यज्ञ के लिए। तो ऐसी अनुमति शास्त्रों में दी गई है। तो खैर, जब कर चुके तो थक गए थे, अर्जुन को प्यास लगी थी, तो यमुना नदी के निकट वे गए, वहाँ पर स्नान किया, जल पिया, और उस समय वहाँ पर उन्होंने एक बहुत सुंदर स्त्री को देखा जो अकेली थी। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जाओ जरा पूछ कर आओ कौन है। तब भगवान क्यों नहीं गए खुद पूछने के लिए? हाँ, अर्जुन को क्यों कहा कि तुम जाओ पूछ कर आओ? इसके कई कारण हैं। एक कारण तो ये कि श्री कृष्ण विवाह करना चाहते हैं, अब कैसे सीधे जाकर पूछेंगे अभी है? तो कोई तो जाना चाहिए ना, जाकर भाई मेरी तरफ से आप जरा जाकर बोलो उनको कि विवाह करें मुझसे। सीधे जाएंगे और मना कर दिया तो फिर क्या होगा? तो श्री कृष्ण को चिंता थी, इसीलिए खुद नहीं गए। और वैसे भी एक नियम है कि अगर विवाह का प्रस्ताव भी रखना, वैसे विवाह के प्रस्ताव के लिए नहीं भेजा अर्जुन को, लेकिन जानते थे विवाह करना है तो विवाह का प्रस्ताव है तो खुद नहीं जाना चाहिए जाकर आगे। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण, श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसलिए भेजा कि वो दिखाना चाहते थे अर्जुन को कि देखो इस कन्या की भक्ति कितना समर्पण है उसका, क्या भक्ति है उसकी। कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि केवल जो पुरुष हैं वही बड़ी कड़ी तपस्या और भक्ति कर सकते हैं, स्त्रियों में कोई ज़्यादा भाव नहीं होता। तो श्री कृष्ण ने दिखलाया अर्जुन को कि अर्जुन अगर तुम्हारे हृदय में थोड़ा सा गर्व है कि तुम्हारे अंदर तुम बहुत तपस्या करते हो, तुम बहुत समर्पित हो मुझे, तो जाओ जरा पूछो कौन है वो, तुम्हें पता चलेगा। तो अर्जुन गए श्री कृष्ण के आदेश पर, कालिंदी देवी से मिले, प्रणाम किया और अर्जुन ने पूछा कि आप कौन हैं, आप यहाँ अकेले इस स्थान पर आप भ्रमण कर रही हैं, किसकी पुत्री हैं, आप क्या चाहती हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं सूर्य देव की पुत्री हूँ और मेरा नाम कालिंदी है और मैं यहाँ पर तपस्या कर रही हूँ इस नदी के अंदर। मेरे पिता ने मेरे लिए एक स्थान बना कर दिया है जहाँ मैं बहुत समय से तपस्या कर रही और मेरा तपस्या का एक ही उद्देश्य है, मैं भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ और केवल उनको। बहुत स्पष्ट उसने भागवत में लिखा है कि कालिंदी ने उनसे कहा कि केवल श्री कृष्ण, उनके अलावा मैं और किसी को नहीं पाना चाहती। और उसने इन शब्दों का उपयोग किया मुकुंद अच्युत अपनी प्रार्थनाओं में कि मैं उनको पाना चाहती हूँ, उनसे विवाह करना चाहती हूँ और इसीलिए मैं यहाँ पर कड़ी तपस्या कर रही हूँ कई सालों से पानी के अंदर और मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं भगवान विष्णु की विष्णु को प्राप्त कर सकूँ अपने पति के रूप में। तो फिर अर्जुन ने जब ये सुना तो अर्जुन आए श्री कृष्ण के पास और अर्जुन ने बताया, अर्जुन ने देखा कि क्या उनकी भक्ति है, क्या समर्पण है कि काफ़ी समय से वो इतनी कड़ी तपस्या कर रही हैं श्री कृष्ण को पाने के लिए। तो अर्जुन को भगवान शायद ये दिखलाना चाहते कि देखो श्री कृष्ण को या मुझे पाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब हमें बहुत कोई चीज़ बड़ी सरलता से मिल जाती है हम उसके महत्व को भूल जाते हैं। तो हो सकता था श्री कृष्ण तो बड़ी सरलता से हर समय श्री अर्जुन के साथ हैं, तो हो सकता अर्जुन भूल जाता कि कितना महत्व है। तो अर्जुन को याद दिला रहे थे कि देखो कितनी कड़ी तपस्या, पानी के अंदर रहकर कई वर्षों से एक स्त्री होकर ये तपस्या कर रही है और इसका उद्देश्य क्या है कि केवल श्री कृष्ण और कोई नहीं चाहिए मुझे, उन्हीं से विवाह करूंगी। तो फिर जब श्री कृष्ण को ये पता चला तो उन्होंने उसको अपने रथ पर आमंत्रित किया और फिर रथ पर बिठाकर उसको ले गए और फिर आगे द्वारिका में जाकर उससे विवाह किया। अब इन विवाहों का भी अलग अलग पुराणों में वर्णन है कि कैसे विवाह हुए थे, क्या क्या हुआ था, उतने उत्सव तो पूर्ण रूप से अभी वर्णन नहीं होगा, लेकिन बहुत जब भगवान का विवाह होगा तो आप सोचिए क्या उत्सव होते होंगे। तो ऐसे कालिंदी से विवाह हुआ तो इसके द्वारा भगवान ने हमें दिखलाया कि श्री कृष्ण को पाना है तो पहली चीज कैसा भाव होना चाहिए, जैसा कालिंदी का था, केवल कृष्ण, अन्य और कोई नहीं, बस एके हक्रु नंदन। हाँ, भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है उसको अपना एक ही लक्ष्य रखकर बढ़ना चाहिए, उसकी जो बुद्धि है वो अलग अलग स्थानों पे नहीं लगनी चाहिए, बहुशाखा नहीं होनी चाहिए। हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी इच्छाएं अभी बहुत शाखा है। हम कभी कभी इच्छा होती है कि बस कृष्ण की ही भक्ति करनी है, केवल कृष्ण को पाना है। फिर कभी कभी इच्छा होती नहीं, कृष्ण के साथ साथ थोड़ा बहुत आनंद भी आ जाए इस जगत में, थोड़ा बहुत ये भी मिल जाए। तो इसके द्वारा पहली चीज सिखलाते हैं कि केवल कृष्ण, बहुत स्पष्ट उन्होंने कहा, अन्य कोई नहीं। तो हमारी भी ऐसी भक्ति श्री कृष्ण के प्रति होने चाहिए, ऐसा भाव श्री कृष्ण के प्रति होना चाहिए। क्योंकि है कौन श्री कृष्ण, वही तो एक भगवान है, अन्य कोई भगवान हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, कहीं पर वर्णन नहीं है। हाँ, हम लोग इस भगवान शब्द का उपयोग कुछ महान व्यक्तियों के लिए करते हैं, जैसे भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, भगवान नारद कहा जाता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सर्वश्रेष्ठ भगवान हैं। आगे वर्णन आएगा, एक विवाह में वर्णन करेंगे कि किस प्रकार श्री कृष्ण की स्थिति का भी वर्णन किया गया है देवताओं से तुलना करते हुए। तो खैर, ऐसे इस विवाह के द्वारा हम ये सीख सकते हैं अपने जीवन में कि हमें एक ही लक्ष्य जीवन का रखना चाहिए और उसके लिए जो भी कष्ट उठाने पड़े। अब कालिंदी देवी को तो जल के अंदर रहकर कई वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी, ये भी नहीं पता था कि कब आएंगे कृष्ण। ऐसा नहीं था कि उन्हें बताया गया था कि इतने साल अब तपस्या करना, इतने बजकर इतने मिनट पर कृष्ण प्रकट हो जाएंगे, नहीं। ये भक्ति है जहां हमें नहीं पता कि हमें कब कृष्ण प्राप्त होंगे, लेकिन कोई चिंता नहीं, कोई ऐसा भाव नहीं कि पता नहीं कब तक करनी है, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, नहीं। शबरी को उसके गुरु ने कहा एक दिन श्री राम आएंगे, शबरी इंतजार कर रही थी, कौन सा दिन था नहीं पता था उसे, रोज सोचती थी शायद आज आएंगे, रास्ते को साफ करती, अच्छे अच्छे फल निकाल कर रखती, शाम तक इंतजार करती, रामचंद्र जी नहीं आते, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं। अगले दिन फिर वही, अगले दिन फिर से रास्ते को साफ करती, फलों को निकाल कर रखती, पूरा दिन इंतजार करती, श्री राम नहीं आते, फिर अगले दिन वही। कई वर्षों तक शबरी ने ऐसा किया। तो अर्थात दो चीजें, पहला एक हमारा लक्ष्य और दूसरा हमें विश्वास, पूर्ण विश्वास होना चाहिए कृष्ण मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे, श्रद्धा होनी चाहिए। हमने एक प्रमाणिक गुरु का आश्रय लिया है, प्रमाणिक परंपरा में है, हम हृदय से तीव्रता से भक्ति कर रहे हैं, क्षमता अनुसार सेवा कर रहे हैं, तो निश्चित है श्री कृष्ण प्राप्त होंगे। ये विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, अन्यथा हमारी भक्ति का, हमारी तपस्या का, हमारी सेवा का उत्साह कम हो जाएगा जिस दिन ये विश्वास हिल गया। अगर कालिंदी देवी को विश्वास नहीं होता तो वो शायद इतने समय तपस्या नहीं करती, शबरी को विश्वास नहीं होता तो वो शायद नहीं रुकती, लेकिन उन्होंने वो विश्वास दिखलाया, वो धैर्य दिखलाया कि हाँ एक दिन होगा। प्रभुपाद कहते हैं कि हमें धैर्य करना चाहिए, उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए धैर्य चाहिए, अभी चाहिए मुझे, ये ऐसा नहीं आज ही कृष्ण मिलने चाहिए मुझे, नहीं तो कल से शिव जी के द्वार पर चला जाऊंगा, ये तो भक्ति नहीं है। धैर्य होना चाहिए कि ठीक है, जैसे धैर्य चैतन्य लीला में हम देखते हैं, एक भक्त को चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं दूंगा दर्शन, कब तक नहीं दूंगा, 1 करोड़ जन्मों तक दर्शन नहीं दूंगा, उछलने लगा, कूदने लगा, नाचने लगा। 1 करोड़ के बाद तो मिलेंगे ना, 1 करोड़ जन्म के बाद तो दर्शन मिलेंगे, बस ठीक है धैर्य। आप लोगों से कहा जाए 16 माला जब 1 करोड़ जन्मों तक करो तब शायद भगवान मिल जाए, तो आप बोलोगे ये लो आपकी माला, नहीं चाहिए। अभी क्या मिल रहा है वो देखना है तुरंत। आजकल सबकी भावना यही है, व्यापार में आज क्या मिलता है वो ले लो, कल का किसको पता नहीं है। लेकिन ये धैर्य चाहिए, ये निश्चय चाहिए। तो कालिंदी देवी का धैर्य था और श्री कृष्ण उन्हें प्राप्त हुए। तो ऐसे ये भगवान का कौन सा विवाह हो गया, नहीं कितना नंबर कितना हो गया, हाँ चौथा विवाह हो गया, अभी चार और बाकी हैं, आज नहीं हो पाएंगे लगता है। फिर पांचवा विवाह भगवान ने किया मित्र बिंदा से। ये भी हरण किया भगवान ने, भगवान रुक्मिणी देवी का हरण कर चुके थे, उसके बाद कोई हरण नहीं किया था भगवान ने। जाम्बवती तो ऐसे ही जामवन ने दे दी, सत्यभामा दे दी, और कालिंदी देवी तो स्वयं चाहती थी और वो तो घूम ही रही थी उनके लिए कि कब श्री कृष्ण आए। तो श्री कृष्ण भी सोच रहे थे कि क्षत्रिय हूँ, बहुत दिन हो गया कुछ, अब अगला विवाह हरण करना चाहिए। तो मित्र विंदा ये अवंती राज्य की राजकुमारी थी, और इनके जो पिता थे और पिता के भाई, ये दोनों दुर्योधन के बहुत निकट के मित्र थे। उनका नाम था विंध्य और अनुविंध्य। तो दुर्योधन को बहुत प्रेम करते थे, बड़े निकट थे। देखिए ऐसे भी लोग थे जो दुर्योधन को प्रेम करते थे। हम लोग जब सुनते हैं महाभारत, हमारा सारा भाव जो होता है बोलने का, बस दुर्योधन ने ऐसा किया, दुर्योधन ने। लेकिन आप सोचिए कि ऐसे भी लोग थे जो दुर्योधन से बड़ा प्रेम करते थे। तो जब मित्रविंदा के स्वयंवर की बात आई तो उन्होंने मित्रविंदा से कहा कि तुम्हें स्वयंवर की अनुमति है। स्वयंवर क्या होता है? स्वयंवर, अपने आप चुन लीजिए कौन सा आपको किसको चुनना है। तो तुम्हें स्वयंवर की अनुमति है, लेकिन एक व्यक्ति को नहीं चुनना, कृष्ण को। कृष्ण को नहीं चुनना, बाकी स्वयंवर, बाकी किसी को भी चुनो, तो फिर फायदा क्या है। अगर हम लोगों से कहा जाए आपको भक्ति करने की अनुमति है, आप पूजा कीजिए, समर्पण कीजिए, जीवन समर्पित कीजिए, किसको जिसकी जिसको करना है कीजिए, केवल एक व्यक्ति को मत कीजिए, श्री कृष्ण को, तो फिर लाभ ही क्या हुआ, फिर भक्ति ही क्या है और फिर समर्पण ही क्या है। तो मित्रविंदा ने भी यही सोचा कि जब श्री कृष्ण को ही नहीं स्वीकार करना तो फिर स्वयंवर का अर्थ ही क्या हुआ। लेकिन क्योंकि बहुत निकट थे दुर्योधन के, इसलिए वो नहीं चाहते थे। देखिए उस समय सारे राजा जान चुके थे कि कौरवों और पांडवों का युद्ध होने वाला है, या कौरव एक तरफ हो चुके हैं और पांडव एक तरफ हो चुके हैं, ये सब जान चुके थे कि इन भाइयों में, क्योंकि ये सारी चीजें हो चुकी थी, लाक्षाग्रह हो चुका था, बहुत सारी बातें हो चुकी थी, तो ऐसे समाज में फैल चुका था कि कौरव और पांडव अब साथ में नहीं रह पाएंगे। और यही कारण था, क्योंकि दुर्योधन से मित्रता थी, इसीलिए अपनी पुत्री का विवाह वो श्री कृष्ण से नहीं कराना चाहते थे, अपनी बहन का। तो ये देखिए किस तरह से व्यक्ति जब किसी क्रूर व्यक्ति का संग करता है या किसी अधर्मी व्यक्ति का संग करता है तो वो भगवान से स्वतः दूर चला जाता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता। भगवान ने तो इन दोनों का कुछ भी नहीं किया था, कोई विरोध नहीं किया, कोई उनके आक्रमण नहीं किया, लेकिन फिर भी ये उनके विरोधी बन गए। क्यों? एक अधर्मी व्यक्ति का साथ देने से, केवल उसको पसंद करने से, उसको प्रिय लगने से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग जीवन में किसका साथ दें, किसके साथ रहें। कभी कभी अधर्मियों का साथ अच्छे कार्य के लिए भी दिया जाता है। जैसे जब हम लोग सत्यभामा की कथा कह रहे थे तो सत्यभामा का विवाह हो गया और वो जो मणि थी वो भी श्री कृष्ण ने वापस कर दी सत्रजीत को, कि नहीं तुम ही रख लो, भगवान को दी लाके, नहीं तुम ही रख लो, कोई बात नहीं, अब आपको पश्चाताप हो गया, आपने पुत्री दे दी। और उसके बाद भगवान चले गए हस्तिनापुर, और उस समय दो भक्तों ने षड्यंत्र किया, अक्रूर जी और कृतवर्मा। इन्होंने षड्यंत्र करके सत्रजीत की हत्या कर दी और वो जो मणि थी वो ले ली उससे। अब अक्रूर जी तो इतने बड़े भक्त हैं, उनका तो गुणगान जितना किया जाए कम है। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? हत्या उन्होंने नहीं की, हत्या के लिए उन्होंने शतधर्म शतधन नाम के एक व्यक्ति को कहा कि तुम करो, तुम बहुत शक्तिशाली हो, और उसने कर भी दिया और सत्यजीत को मार दिया और मणि लेकर चला गया। तो सत्यभामा बहुत दुखी हुई और सत्यभामा गई श्री कृष्ण के पास। श्री कृष्ण उस समय हस्तिनापुर में थे, बलराम जी भी हस्तिनापुर में थे, और उन्होंने ऐसे बताया तो बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण बलराम को तुरंत वापस आए, तो जब वापस आए तो अब सबको पता चल गया कि अब तो श्री कृष्ण छोड़ेंगे नहीं। तो जो शतधन था वो भागता हुआ कृतवर्मा के पास गया कि अरे अरे मुझे बचाओ, तुम चलो अब युद्ध करो श्री कृष्ण से। कृतवर्मा ने कहा कोई श्री कृष्ण से युद्ध कर सकता है क्या? वो तो भगवान है, उनसे कौन युद्ध कर सकता है? देखिए पहले भड़काया भी इन्होंने ही था। बहुत सुंदर लीला है ये। पहले तो जाकर बोला कि चलो श्री कृष्ण बलराम नहीं है, जाओ तुम बहुत शक्तिशाली हो, तो ये गर्व से फूल गए, जाके कर दिया। अब आए रक्षा करो तो बोले हम तो नहीं कर सकते, श्री कृष्ण से कौन युद्ध करेगा, मेरे अंदर शक्ति नहीं है, बलराम जी तो मुझे निचोड़ देंगे पूरा एकदम। ऐसे जैसे कपड़े को निचोड़ा जाता है वैसे मुझे निचोड़ेंगे, सारा खून निकल जाएगा, खत्म हो जाऊंगा। तो फिर अक्रूर जी के पास गए, अरे आप तो कुछ करो, आपने ही कहा था। अक्रूर जी परम पुरुष भगवान है, उनको मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, मैं तो नहीं करूँगा। तो इन भक्तों ने क्यों किया ऐसा? हाँ बाद में जाकर भगवान ने फिर उसने क्या किया, शतधन ने कि ठीक है ये मणि तुम रख लो, अक्रूर को कहा मैं आता हूँ, रखना अपने पास, और भाग गया वहां से। फिर श्री कृष्ण भागे और उन्होंने पकड़ कर मार दिया, मणि ढूंढी मिला नहीं, तो श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा इसको बेकार में मार दिया, इसके पास तो मणि मिली ही नहीं। तो बलराम जी ने कहा कहीं होगी, किसी के पास रख कर आया होगा, जाओ ढूंढो। तो खैर बात यह है कि क्यों अक्रूर जी ने साथ दिया ऐसे षड्यंत्र में, चोरी करना और मार देना, तो कई कारण बताए गए, लेकिन एक प्रमुख कारण जो आचार्यों ने समझाया वो ये है कि जब सत्यजीत ने निंदा की थी श्री कृष्ण की, तो बहुत क्रोध आया था अक्रूर जी को, तो अब श्री कृष्ण नहीं थे तो उसका बदला लेना चाहता था अक्रूर जी, कि इसने श्री कृष्ण की निंदा की है तो इसको दंड मिलना चाहिए, तो दंड देने के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो आचार्य इस बात को समझाते हैं कि उन्होंने अपनी इच्छा के लिए नहीं किया, लेकिन श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए क्या अधर्म करना सही है? क्या श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं कि उनकी प्रसन्नता के लिए अधर्म करना चाहिए? आप लोग क्या सोचते हैं, करना चाहिए या नहीं? फिर अक्रूर जी ने किया श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और भगवान ने दंड नहीं दिया उन्हें। ये और भी कई ऐसे उदाहरण हैं जहां श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अधर्म किए। हाँ हमें नहीं करना चाहिए, ऐसे भक्त जो बहुत ऊंचे स्तर पर हैं उनके सारे कार्य श्री कृष्ण के द्वारा निर्देशित होते हैं। परीक्षित महाराज ने एक मरे हुए सांप को एक ऋषि के गले में डाल दिया, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, सभ्यता नहीं है, लेकिन वो श्री कृष्ण की योजना से हुआ। तो ऐसे भक्त जो पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित हैं, जिनका सारा जीवन, जिनकी एक एक सांस श्री कृष्ण को समर्पित है, उनके लिए धर्म और अधर्म कोई मायने नहीं रखता। वो जो करते हैं वो धर्म है, क्योंकि वो केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। अर्जुन ने मारा, अपने गुरु को मारा, छुपकर मारा भीष्म को, धर्म है वो, क्योंकि श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया गया। लेकिन हमें नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं सोच लेना चाहिए कि हाँ श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम झूठ बोल सकते हैं, हम पाप कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जीवन सीधे कृष्ण के द्वारा नियंत्रित नहीं है, हम अभी उतनी शुद्ध स्तर पर नहीं हैं, इसलिए हमें अधर्म नहीं करने चाहिए, हमें धर्म के मार्ग का पालन करना चाहिए। तो अधर्मी व्यक्ति के साथ रहकर हम भी अधर्म में लगते हैं, तो दुर्योधन के साथ रहकर ये विंध्य और अनुविंध्य ये सोच रहे थे कि हमारा बहुत प्रिय मित्र है, इसीलिए श्री कृष्ण के प्रति हमें श्री कृष्ण को अपनी पुत्री नहीं देनी चाहिए, अपनी बहन नहीं देनी चाहिए, तो मना कर दिया था। तो जब स्वयंवर हुआ, सारे राजाओं को बुलाया, स्वयंवर शुरू हुआ और कहा गया मित्र वृंदा से कि ठीक है आप देख लीजिए, आपको जो पसंद हो, आपको जो प्रिय हो उसको वरमाला डाल दीजिए। अब वो तो इंतजार कर रही थी और श्री कृष्ण को पता चला कि ऐसे स्वयंवर हुआ है लेकिन स्वयंवर में बुलाया नहीं और वो चाहते नहीं हैं कि वे जाएं। तो फिर श्री कृष्ण वहाँ पर अकेले गए और वहाँ पर ऐसे वर्णन करते हैं कि जैसे गरुड़ जी सबके देखते देखते अमृत का जो मटका था उसको उठा कर ले गए थे सबके बीच से, ऐसे ही श्री कृष्ण सब राजाओं के देखते देखते सबके बीच से मित्रविंदा को उठाकर ले गए, हरण किया उन्होंने। तो इस प्रकार मित्रविंदा से भी फिर द्वारका में लेकर आकर उन्होंने विवाह किया। तो ऐसे श्री कृष्ण ने अपने शौर्य का, अपने बल का प्रदर्शन किया। जब श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर थे तो उस समय भी वे सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे, सारे गुण उनके अंदर थे, बल ऐश्वर्य सब कुछ था। वैसे तो वो भगवान हैं, ये सारी चीजें तो स्वाभाविकता उनके अंदर हैं, लेकिन फिर भी एक मनुष्य की लीला करते हुए भी सर्वश्रेष्ठ वो बने रहे। तो ऐसे उन्होंने मित्रविंदा का अपहरण किया और सबके सामने से उसको उठाकर ले गए। तो ये पांचवा विवाह हुआ श्री कृष्ण का। अब छठा विवाह हुआ था नागनजीति से। ये भी बहुत सुंदर लीला, सुनना चाहते हैं कि अगली बार करेंगे इसको? कितने लोग सुनना चाहते हैं? धन्यवाद, क्योंकि समय हुआ तो हमने सोचा कि, लेकिन फिर 8 विवाह और उसके बाद 16,100 विवाह और उसके बाद 1 विवाह और, अर्थात टोटल पूरे 16,109 विवाह हैं। अभी केवल कितने हुए हैं? 5 हुए हैं। तो अगर पूरे का वर्णन करेंगे तो आप तैयार हैं ना, पूरे बैठे रहिएगा तब तक, ठीक है? आज प्रयास करेंगे नागनजीति का कम से कम पूरा वर्णन कर देंगे और फिर 6 हो जाएंगे ना, और 2 रह जाएंगे, भद्रा और लक्ष्मणा। तो उनका फिर जब अगली बार कभी रविवार को प्रवचन होगा तो उसमें करेंगे। इसलिए आज हमने प्रयास किया था जल्दी प्रवचन प्रारंभ करें ताकि ये हो सके पूरा। तो नागनजीति इनसे भी जब विवाह हुआ तो ये कौशल देश की राजकुमारी थी और उसकी राजधानी थी अयोध्या। तो श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या में जन्म लिया था और श्री कृष्ण अयोध्या में गए थे विवाह करने। तो अयोध्या की राजकुमारी थी नागनजीति, बहुत सुंदर थी और इतनी सुंदर थी कि बहुत से लोग पहले से ही, ये जो राजा था जिनका नाम था नागनजीत, इनकी पुत्री नागनजीति, तो उनसे बहुत से लोग इसका हाथ मांगा करते, इतनी सुंदर थी ये। लेकिन इनके हृदय में एक भावना थी कि एक श्रेष्ठ पुरुष से मेरी पुत्री का विवाह होना चाहिए और वो चाहते थे कि कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं कर ले। लेकिन ऐसा होता था कि कई बड़े बड़े क्षत्रिय आया करते हाथ मांगने के लिए, तो मना करना, आप जानते हैं क्षत्रियों को मना कर देना तो युद्ध हो जाया करता था। क्षत्रिय तो बात बात पे तलवार निकाल लेते हैं, तो बड़ा कठिन। अब आया कोई कि वे पुत्री का विवाह करो, अब हाँ बोले तो तकलीफ है कि नहीं करना चाहते हैं, और ना बोले तो तलवार निकल जाए। तो राजा को बड़ी चिंता थी कि क्या करें, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि कोई साधारण व्यक्ति मेरी पुत्री से विवाह करे। यह कहना चाहिए कि उनके हृदय में ये भावना थी कि श्री कृष्ण ही मेरी पुत्री से विवाह करें, लेकिन अब बाकी लोगों को कैसे मना करते। वैसे क्षत्रियों की ये परंपरा रही है। अब देखिए श्री कृष्ण के ज़्यादातर जो विवाह हुए युद्ध करके ही हुए, युद्ध करना पड़ा, राजाओं को परास्त करना पड़ा, तो ऐसे ही उन्होंने युद्ध किए और भी बाकी हम लोग देखते हैं। तो क्षत्रियों में छोटी छोटी बातों पर युद्ध हो जाया करता था। बहुत बड़ा युद्ध हो गया, क्या हुआ, बस विवाह के लिए आया, कैसे वो ले गया हमारे सामने, रुक्मिणी को हरण किया। अब जब हरण कर लिया था श्री कृष्ण ने तो छोड़ देना चाहिए था, तुम्हारी शक्ति नहीं है, श्री कृष्ण ले गए हैं। नहीं, कैसे ले गए, हम पीछे जाएंगे, युद्ध करेंगे। बड़ा युद्ध हो गया, सारी सेना, कितनी सेना मर गई एक विवाह के लिए। तो ऐसे ही तो रोकना था। तो राजा ने एक उपाय सोचा, उसने सोचा कि एक ऐसी शर्त रखें कि जो केवल श्री कृष्ण ही पूरी कर पाए। तो उन्होंने 7 बैल, उनके पास 7 बड़े ही खतरनाक बैल थे। बैल भी बड़े खतरनाक हो सकते हैं कभी कभी। वैसे तो ज्यादातर बैल हमारे जो गौशाला में बड़े शांत हैं, कुछ नहीं करते हैं। छोटा बैल है, आप जाइए तो ऐसे मुंह उठा देता है, आराम से उसको। हमारे जो गौशाला के बैल हैं वो जानते हैं कि हम लोग शुद्ध नहीं हैं, इसलिए अपनी सेवा करवा के हमें शुद्ध करते हैं। वो जब भी जाते हैं तो गाय बैल सब करते, चलो खड़े मत रहो, थोड़ी सेवा करो। तो फिर हम लोग सेवा करते हैं तो खड़े रहते हैं चुपचाप। लेकिन कुछ बैल बड़े खतरनाक भी होते हैं। हम अभी थोड़े दिन पहले सुन रहे थे कि शिमोगा जो स्थान है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, उसमें एक विशेष प्रकार के बैल होते हैं खिलाड़ी, उनके बहुत बड़े बड़े सींग होते हैं। तो एक डॉक्टर हमें बता रहे थे, मिलने आए थे शिमोगा से, तो बोल रहे थे कि हमारे पास हर रोज ऐसे केस आते हैं कि जहाँ पर बैलों ने मार दिया है, तो या तो पेट में घुस गए सींग, या कहीं और मार दिया, व्यक्ति मर गया, या बहुत गंभीर अवस्था में लाया जाता है हमारे हॉस्पिटल में। तो इसलिए वहाँ सरकार ये प्रयास कर रही है कि जितने भी बैल हैं उन सबके सींग काट दिए जाएं, ताकि लोगों को नुकसान ना पहुँचे। तो ये तो अभी इस समय के कलयुग के बैल हैं, उस समय के तो कितने खतरनाक बैल होंगे। तो 7 बहुत खतरनाक बैलों को चुना। उनका वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इतने खतरनाक थे कि अगर कोई योद्धा की उनको खुशबू या सुगंध भी आ जाती थी तो वो सहन नहीं कर सकते थे। मतलब किसी को अपने पास भी आने नहीं देते थे, स्पर्श करना तो बड़ी दूर की बात है। तो ऐसे 7 खतरनाक बैलों को उन्होंने एक शर्त रखी कि जो भी योद्धा, जो भी क्षत्रिय, जो भी राजा इन 7 बैलों को, बैलों के नाक में रस्सी बांधकर उनको वश में कर लेगा, उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कर लूंगा। बड़ी विचित्र बात है। 7 बैलों को वश में करना है, और जो कर सकेगा। तो कई योद्धाओं ने, कई राजाओं ने, क्षत्रियों ने प्रयास किया। तो ये बताते बताते जब राजा एक बता रहे थे श्री कृष्ण को, तो कहने लगे कि कई क्षत्रियों ने प्रयास किया और अपने हाथ पैर तुड़वा कर, हड्डियां तुड़वा कर वापस चले गए। मतलब वो बता रहे थे कि बहुत खतरनाक है। तो ऐसे ये विवाह की शर्त रखी, और नागनी जीती भी चाहती थी कि वो श्री कृष्ण से ही विवाह करें, जैसे मित्रविंदा भी चाहती थी। मित्रविंदा का भगवान ने अपहरण किया, और नागनी जीती ये सोच रही थी कि कब विवाह होगा, क्योंकि कोई भी इस शर्त को पूरा नहीं कर पाया। और जब श्री कृष्ण ने सुना कि नागनी जीती बहुत सुंदर हैं, तो श्री कृष्ण वहां पर गए अपनी सेना को लेकर। राजा ने बहुत आदर सत्कार किया, बहुत आराम से बिठाया, और फिर श्री कृष्ण से उन्होंने पूछा आप कैसे हैं इत्यादि, तो क्या मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तो जब नागनी जीती ने श्री कृष्ण को केवल देखा मात्र, तो उस समय उसके हृदय में प्रार्थना करने लगी वो कि बस मुझे यही श्री कृष्ण मेरे पति के रूप में चाहिए। और वो जान गई कि ये परम पुरुष हैं, और वो कहने लगी कि श्री कृष्ण जिनके चरणों की धूल शिव, ब्रह्मा इत्यादि, स्वयं लक्ष्मी देवी अपने सर पर धारण करती हैं, वे मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। नागदेव जीती ने बहुत सुंदर प्रार्थना भगवान के प्रति की। वो कहने लगी कि अगर मैंने अपने जीवन में सारे व्रतों को, तपों को किया है, तो श्री कृष्ण ही मेरे पति बने। केवल देखा उसने और इस भावना में थी। अर्थात वो ये बतला रही थी कि हमारे जितने भी तप हैं, हमारे जितने भी तपस्या या व्रत लेते हैं, वो सब एक उद्देश्य के लिए होने चाहिए, श्री कृष्ण की प्राप्ति। आराधितो यदि हरिम तपसा तत्किम, न आराधितो यदि हरिम तपसा तत्किम। हम तपस्या कर रहे हैं, और उसका उद्देश्य श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं है तो ऐसी तपस्या का क्या लाभ है। और अगर हम तपस्या कर रहे हैं आराधित तो यदि हरिम, अगर हम श्री कृष्ण को पा चुके हैं तो फिर तपस्या का क्या लाभ है, फिर तपस्या किस लिए। नारद मुनि ये कहते हैं, वो कहते हैं कि तपस्या का उद्देश्य एक ही है, श्री कृष्ण की प्राप्ति। तो इसलिए हमें भी जीवन में ये देखना चाहिए, जानना चाहिए। नागनीति बता रही हैं, नागनीति बता रही हैं कि किस प्रकार हमें केवल जो तपस्या करनी है, जो व्रत लेना है ले सकते हैं, लेकिन एक ही उद्देश्य से, श्री कृष्ण की प्राप्ति। कभी कभी तपस्या करते करते अहंकार आ जाता है, हम तपस्या फिर अहंकार की पूर्ति के लिए करते हैं। कभी कभी हम कुछ व्रत लेते हैं, अहंकार आ जाता है, तो हम उस व्रत को अहंकार को पोषण देने के लिए पूरा करते हैं, श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए नहीं। तो चाहे कोई भी व्रत हो, चाहे कोई भी तपस्या हो, वो केवल श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए हमें करनी चाहिए। तो ये नागनजीति कहने लगी कि मेरी जितनी भी जीवन में मैंने तपस्या की है, व्रत किए हैं, उन सब का फल मैं केवल यही चाहती हूँ कि श्री कृष्ण मेरे पति बने। और फिर वो कहने लगी कि जितने भी देवता हैं, चाहे शिव हो, ब्रह्मा हो, लक्ष्मी हो इत्यादि, वे सब श्री कृष्ण के चरण कमलों की धूल को अपने सर पर धारण करते हैं। तो वो बताने लगी कि वो ज्ञान के द्वारा समझा रही हैं कि मैं श्री कृष्ण को केवल भावुकता में स्वीकार नहीं कर रही हूँ, मैं जानती हूँ श्री कृष्ण कौन है। तो संदेश देती हैं कि हमें श्री कृष्ण को भावुकता में स्वीकार नहीं करना है कि श्री कृष्ण का विग्रह बहुत सुंदर है, बस आज से मैं इसी मंदिर में जाऊंगा, नहीं। हाँ, श्री कृष्ण सुंदर है, यह आकर्षण अच्छी बात है, लेकिन जैसे हमने इस प्रवचन की शुरुआत में कहा था, तत्वतः जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। जब हम तत्व को जानते हैं और तब कृष्ण की सुंदरता को देखते हैं, उसमें अंतर होता है। श्रील प्रभुपाद ने इसका उदाहरण दिया। एक समय श्रील प्रभुपाद वृंदावन में राधा श्याम सुंदर के दर्शन कर रहे थे, साथ में भक्त थे। तो एक श्रील प्रभुपाद के भक्त ने उनसे कहा, प्रभुपाद राधा रानी कितनी सुंदर लग रही हैं। प्रभुपाद ने उनको गुस्से में देखा, बोला ये माया है। तो राधा रानी सुंदर लग रही है, माया है। तो प्रभुपाद ने कहा कि तुम श्रीमती राधा रानी को एक भौतिक स्त्री की सुंदरता से तुलना कर रहे हो, उस दृष्टि से देखकर तुम्हें वो सुंदर लग रही है। अर्थात प्रभुपाद क्या समझा रहे थे, तत्वतः नहीं। अभी तुमने श्रीमती राधा रानी को तत्वतः जाना नहीं है, कौन है श्रीमती राधा रानी। तो इसलिए जब हम राधा रानी को देख रहे हैं तो बहुत सुंदर लग रही हैं, तो क्या भाव है, जैसे अन्य स्त्रियां सुंदर लगती हैं, ये उनमें थोड़ी से ज्यादा सुंदर लग रही हैं, बस ये गलत भाव है। श्री प्रभुपाद कहते हैं तत्वतः, जब ज्ञान के द्वारा, ज्ञान लेकर जब हम श्रीमती राधा रानी के दर्शन करते हैं, तब सुंदरता जो होती है वो सही सुंदरता है, वो दिव्य है। इसीलिए भगवान ने कहा तत्वतः, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है श्लोक में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। तो इसलिए ऐसे चीजों को, तो यहां नागनजीति समझा रही हैं हमें कि श्री कृष्ण को देखकर वो क्यों आकर्षित हुई हैं, इसलिए नहीं कि केवल वो सुंदर लग रहे हैं, इसलिए कि वो जानती हैं तत्वतः, श्री कृष्ण तत्व को जानती हैं। श्रील रूप गोस्वामी को जब चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाएं प्रदान की तो उनमें कई तत्वों का वर्णन किया, और सबसे प्रमुख था श्री कृष्ण तत्व। ना भागवत तत्व का वर्णन किया, रस तत्व का वर्णन किया, लेकिन प्रमुखतः श्री कृष्ण। तो इसीलिए हमें कृष्ण को तत्वतः जानना चाहिए, ज्ञान से जानना चाहिए, भावुकता से नहीं, शास्त्र के आधार पर कृष्ण को जानना चाहिए, तब हम हमारा जो आकर्षण है श्री कृष्ण के प्रति वो सही आकर्षण होता है, तीव्र आकर्षण होता है, और ऐसे आकर्षण से फिर हम श्री कृष्ण को आकर्षित करते हैं। जो भक्ति तत्वतः की जाती है, ज्ञान के आधार पर की जाती है, वो भक्ति श्री कृष्ण आकर्षणी कहलाती है, वो भक्ति श्री कृष्ण को आकर्षित करती है। तो फिर नागनजीति ने ऐसी प्रार्थनाएं अर्पण की और श्री कृष्ण से जब उनके पिता ने पूछा कि अब क्या चाहते हैं, क्या सेवा कर सकता हूं आपकी, तो श्री कृष्ण ने कहा कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। तो बहुत प्रसन्न हुए राजा नागनजीत। उन्होंने कहा कि आप जैसा वर जिसे प्राप्त हो उसके भाग्य का तो कहना ही क्या, लेकिन फिर भी पूर्व में मैंने एक शर्त रखी थी, अपनी पुत्री का हाथ मैं उस व्यक्ति के हाथ में दूंगा जो ये 7 बैलों को एक साथ एक ही समय में वश में कर सकेगा। तो घबरा रहे थे श्री कृष्ण को बोलने के लिए, लेकिन बोलना पड़ा। तो श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो श्री कृष्ण ने अपने जब युद्ध के लिए जाते हैं या मल्ल युद्ध करने, तो जरा वो शर्ट वर्ट ऊपर कर लिया, वो क्या वो थोड़ा इधर हाथ मारा, थोड़ा इधर हाथ मारा, अपने कपड़े वपड़े सब टाइट कर लिए। धोती पहनते थे तो धोती लूज हो तो पाँव में अटक सकती है, इसलिए जरा से टाइट कर लिया। और फिर श्री कृष्ण उतर गए उन 7 बैलों को। और श्री कृष्ण ने उस समय नागनजीति को एक संदेश भी दिया और अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन किया। श्री कृष्ण 7 रूपों में प्रकट हुए। नागनजीति ने देखा श्री कृष्ण एक थे, फिर 7 रूपों में विस्तार कर लिया उन्होंने अपना, और 7 रूपों में विस्तार करके बड़ी सरलता से एक ही रस्सी से उन 7 बैलों को वश में कर लिया। बहुत सरलता से, कृष्ण को कोई कष्ट नहीं हुआ। एक समय हम एक कृष्ण का कहीं से आ रहे थे, तो कहीं पर कृष्ण का कार्टून लगा था, मतलब कार्टून पिक्चर चल रही थी, तो उसमें कृष्ण की कोई लीला चल रही थी, तो उसमें दिखा रहे थे कि एक असुर से युद्ध कर रहे थे कृष्ण, तो कृष्ण को बहुत दम लगाना पड़ रहा था, उसमें वो दिखा रहे थे। ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन वो बहुत जोर से पूरा दम लगा रहे हैं कृष्ण और उसको मारने के लिए, ऐसा नहीं होता है। कृष्ण को भी कभी इतना प्रयास नहीं करते, कृष्ण बड़ी सरलता से मारते हैं, क्योंकि कृष्ण मारने वाले को भी जो मर रहा है उसको कष्ट नहीं देना चाहते हैं, इसलिए एक थप्पड़ मारते मर जाता है बस, ज्यादा कुछ नहीं। जरा से अपने पांव हिलाते हैं, स्पर्श होता है, मर जाता है, ज्यादा कष्ट नहीं देते हैं कृष्ण। ये तो अन्य अवतारों में जब आते हैं तो कष्ट देते हैं, बड़ा युद्ध बुद्ध इत्यादि, या तो सरलता से बड़ी आसानी से मार देते हैं कृष्ण। मारना है ना, क्यों ज्यादा चिंता करना। दूध पीते पीते मार देते हैं, हवा में खेलते खेलते मार देते हैं, तो इसलिए ज्यादा नहीं। तो इसलिए इधर भी ज्यादा समय नहीं लगा कृष्ण को, एक ही रस्सी में उन्होंने 7 बैलों को वश में कर लिया। अपने 7 रूप प्रकट करके वो नागनजीति को एक संदेश दे रहे थे कि अगर नागनजीति के हृदय में ये भावना आए कि कृष्ण की तो और भी रानियां हैं, फिर अगर मुझसे विवाह करेंगे तो क्या मुझे समय दे पाएंगे या मेरा क्या स्थान होगा, तो भगवान वहां अपना विस्तार करके उसको ये संदेश दे रहे थे कि जैसे इस समय मैं अपना विस्तार कर रहा हूं इन 7 बैलों को वश में करने के लिए, उसी तरह जब गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन करूंगा, विवाह करूंगा, तो वहां भी मेरा विस्तार होगा। और इसका प्रमाण हम भागवत में आगे देखते हैं, जब नारद मुनि द्वारका में जाते हैं भगवान के अलग अलग महल में, तो सब जगह भगवान होते हैं और अलग अलग कार्य कर रहे होते हैं, तो भगवान ने 16108 रानियों को संतुष्ट रखा, ये केवल भगवान ही कर सकते हैं। तो ऐसे उनका ये 6ठा विवाह हुआ नागनजीति से। और आज समय बहुत हुआ है तो 7वां और 8वें विवाह का वर्णन फिर जब अगली बार रविवार कार्यक्रम में होंगे तब करेंगे। कैसे भगवान ने भद्रा और लक्ष्मणा इन दोनों से विवाह किया, फिर कैसे 16100 विवाह हुए, और फिर और एक विवाह जो बाकी है उसका वर्णन अगली बार करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी के कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी, कुछ पूछना चाहते हैं? माइक दीजिए उनको।
हाँ, नौवां विवाह किसने की? लड़की से क्या जानना चाहता हूँ।
अब अगले रविवार तक रुकिए, सीक्रेट है, बताएंगे विवाह भी कैसे हुआ बताएंगे, बड़े विस्तार से विवाह का वर्णन है लेकिन अभी नहीं।